नमस्कार। आज के इस विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दर्शकों, हमारे इस विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है नागपुर शहर के विविध विषय के विविध स्कूल से आए हुए शिक्षक, और इन्हीं शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है परम आदरणीय पुष्पा रानी दीदी। दीदी नमस्कार। दीदी जी का परिचय देते हुए मुझे बेहद हर्ष होता है। दीदी जी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने सेवा के 56 वर्ष पूरे किए। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ईश्वरीय सेवा में अपने आप को समर्पित करने का निर्णय लिया, और तब से लेके आज तक वो अपने इस निर्णय पर निश्चय बुद्धि के साथ अडिग है। दीदी आपका मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना जीवन नहीं, गुरु के बिना जीवन में है अंधकार, और इस अंधकार को मिटाकर गुरु ही हमारे जीवन नैया को लगाता है पार। मैं आमंत्रित करती हूँ अपने प्रथम प्रश्नकर्ता को, श्री अशोक कुरझड़कर सर।
परम पूजनीय दीदी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं निवृत्त प्राचार्य हूँ। मैं कई सालों से साधना कर रहा हूँ, पर मेरा यह प्रश्न है कि मेरे परिवार में सुख और शांति तो है, पर मेरा जो लड़का है उसे कंप्यूटर इंजीनियर होने के बाद में भी आज तक नौकरी के लिए भटक रहा है। इसलिए कभी कभी ध्यान करते समय या ओंकार साधना करते समय मन में कई विचार आते हैं और कॉन्सेंट्रेशन विचलित होता है, मैं क्या करूं।
ये जो आपके सामने एक छोटी सी समस्या है, किसको पढ़ाई के बावजूद भी सर्विस नहीं मिल रही, उसके लिए हम कहेंगे प्रयास को जारी रखिए, उम्मीद मत छोड़िए। उम्मीद छोड़ने से जीवन में निराशा आती, निराशा हमारे मन को भटकाती है, और जो प्रयास करते ही रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसका हल मिल ही जाता है, रास्ता निकल ही जाता है। इसके लिए थोड़ा धीरज रखें, क्योंकि आप वर्तमान समय में देखते हैं टोटली नौकरी मिलने में हर एक के सामने बहुत कठिनाइयां आती है, तो आपको भी उस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परंतु जब एक निश्चय रखेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये कार्य हो ही जाएगा, तो प्रयास में आपका ढीलापन नहीं आएगा, और ना ही परमात्मा के ध्यान में बैठते समय दूसरे संकल्प आएंगे। क्योंकि आप सोच लीजिए, वो समय प्रभु चिंतन के लिए बैठा हूं, ना कि एक पारिवारिक समस्याओं के चिंतन में, क्योंकि चिंता एक चिता के समान होती है। इसलिए चिंता को दूर रखिए, चिंता मुक्त रह करके परमात्मा के में मन को लगाएं, तो आपके मन में भी बहुत हल्कापन महसूस होगा।
हमारे बच्चों की उपजीविका का प्रश्न हमारे लिए बहुत गहन प्रश्न होता है, लेकिन फिर भी उम्मीद ना छोड़े, धीरज रखे, प्रभु चिंतन में अपना मन लगाए, अवश्य एक दिन सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं आमंत्रित करती हूँ अगले प्रश्नकर्ता को, श्रीमती उषा पुजारी।
आदरणीय दीदी को प्रणाम करते हुए मैं ये जानना चाहूंगी कि शिक्षक बच्चों को जब डांटते हैं तो कुछ बच्चे आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, इसमें दोष किसका?
इसके लिए पहली बात, तो बच्चे में वो सुनने की शक्ति नहीं है। बच्चा ये नहीं समझता है कि ये मेरे कल्याण के लिए कह रही है, वो सोचता है मुझे ये क्यों कहते हैं, क्यों क्यों मैं जाकर के सहन शक्ति की कमी के कारण वो इस प्रकार के उल्टे प्रयास करने लगते हैं। और ये भी नहीं है कि जरूरी शिक्षक की ही बात को लेकर के वो आत्महत्या करने के लिए तैयार होते हैं, कई और भी बातें उसके मन में होती हैं। हो सकता है उसका कहां अटैचमेंट हो सकता है कोई और से भी डांट वो ही पड़ती हो, या उसके व्यर्थ खर्च हो, व्यर्थ खर्च से बाहर वाले भी माता पिता भी उनको कहते हो, कई प्रकार की कमजोरियां इस जीवन में होती हैं, और खास करके संग दोष में आकर के ये विद्यार्थियों में ये कमजोरी आ जाती है, इसलिए वो सुनने की शक्ति रखते ही नहीं है। इसलिए वो हम केवल अपने को दोषी नहीं ठहराए, परंतु हम ये प्रयास जरूर करें, प्यार से बैठ करके समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये देखा गया है डांटने से बच्चे ढीठ बन जाते हैं, उनके मन में ये भी आ जाता है कि ये मेरे को हमेशा गलत सिद्ध करते हैं, ठीक है मैं गलत काम करके दिखाऊंगा। कई प्रकार के कुविचार उनके मन में आते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम उनकी आत्महत्या का होता है। इसके लिए हमारे को उनकी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए उनमें पहले स्नेह की शक्ति दे उनको, जब वो समीप आएंगे तो आपकी प्यार की बात को स्वीकार कर सकेंगे, और उसमें डांटते समय ये भी देखें कि अगले में सहन करने की शक्ति है या नहीं।
अगला प्रश्न लेकर उपस्थित है हमारे सामने शालिनी बराई।
दीदी को प्रणाम करते हुए, अब अपने जिंदगी में हमेशा तनाव रहता है, वो तनाव कैसे तनाव मुक्त करने, तनाव हमारा जो तनाव है वो मुक्त करने के लिए आप कोई सुझाव दीजिए हमें।
तनाव एक मन की बीमारी है, उसका कारण है कोई भी बात का हम सामना नहीं कर सकते, बातें कहो समस्याएं कहो हर एक के जीवन में आती है, परंतु अगर हमारे अंदर वो आत्मिक शक्ति होगी तो तनाव दूर सहज हो जाएगा। और ये वास्तव में हमारे विचारों से संबंध रखता है। एक विचार के ऊपर मैं एग्जाम्पल दूंगी, एक व्यक्ति जा रहा है उसकी ठोकर लग जाती है तो वो सॉरी कह के आगे बढ़ जाता है, दूसरा व्यक्ति है ये अंधे दिखाई नहीं देता तो झगड़ा हो जाता है, ना वो आगे बढ़ पाता है ना वो, ये विचार संस्कारों की बात है। अगर हमारे मन के अंदर हमने वो अपनी नेचर बना रखी है, हर बात के अंदर ये क्यों हुआ, इसने क्यों कहा, इसका क्या मतलब था, अभी देखना मैं इसको क्या बताती हूं, मैं ईंट का जवाब पत्थर में देकर के रहूंगी, तो ये जो एक सोच आ जाते हैं क्यों क्या कैसे कब कहां, ये सोच हमारे को तनाव में लाते हैं। तनाव का और कोई कारण नहीं है। जैसे अगर एक किसी को तकलीफ है, ये मेरे को ही क्यों आई, भगवान मेरे साथ ही अन्याय क्यों करता है, मनुष्यों के साथ तो हम क्यों क्यों लगाते हैं, पर इस बात में भगवान को भी नहीं छोड़ते। और क्यों क्या जो एक प्रश्न चिन्ह है, आदत पड़ जाए तो लगता रहेगा, उसकी कभी एंड नहीं होती है। उसकी बजाय अपने आप से बात करना सीखो कि मैं ये प्रश्न करती ही क्यों, जबकि एक सृष्टि नाटक है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं, जो संस्कार है वो दिखाएगा जरूर। तो जब वो अपना पार्ट बजा रहा है, उसके पार्ट के अंदर मैं इंटरफेयर क्यों करूं, उसमें मेरा क्या जाता है। तो स्वयं से अगर आप बात करें तो इस मन की बीमारी को, इस मन की कमजोरी को आप दूर कर सकेंगे।
अगले प्रश्नकर्ता को प्रश्न के लिए आमंत्रित करती हूँ, वंदना बनकर।
ओम शांति दीदी। मेरा प्रश्न है दीदी कि आपका आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो, उसके तरीके से हम स्टूडेंट को उसकी चंचलता की बुद्धि को कैसे कंट्रोल कर पाए।
इस विद्यालय के अंदर अनेक आत्माएं आती हैं, परिवार के परिवार आते हैं, तो सबसे पहले यही उनके ऊपर अटेंशन दिया जाता है, उनको वो शिक्षा दी जाती है, ज्ञान समझाया जाता है कि पहले मन क्या चीज है, कहां भटकता है, क्यों भटकता है। जब वो इस चीज का कारण समझते हैं कि क्या मेरा मन कोई वस्तु में भटकता है, क्या मेरा मन कोई व्यक्ति में भटकता है, या मेरा मन कोई प्रॉब्लम में भटकता है, या मेरा मन एक कार्य कर रही हूं दूसरे कार्य की ओर जाता है, इस चीज को हम पहले चेक कर लें। जब वो हम चेक करेंगे तो उसके मन के ऊपर वो लगाम रख के, वो कंट्रोल करके उधर से हम खींच के ले आएंगे। छोटेपन में भी जब आपके बच्चे छोटे थे वो दौड़ते थे, पर आपको लगता था मन वो बच्चा कहीं गिर ना जाए, तो आप दौड़ करके उसको पकड़ते थे ना, कहीं चोट ना लग जाए उसको बचाते थे ना। तो ये व्यर्थ संकल्प भी हमारे को एक प्रकार से चोट लगाते हैं, दुखी करते हैं। तो जैसे बच्चे को पकड़ के लाते ऐसे अपने मन को भी पकड़िए, जो कार्य जिस समय करना है मन लगा के करिए, वो पूरा हुआ उसका चिंतन छोड़ दो। फिर दूसरा कार्य सामने आया उसको दिल लगा के करिए, अलबेले होकर के नहीं, जबरदस्ती से कर रहा हूं वो भी नहीं, क्योंकि कई बार दिल नहीं होती है और करते तो वहां भी मन भटकता है। जो कार्य सामने आया खुशी से, उमंग से, उल्लास से करें। अगर जीवन में खुशी नहीं है तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं।
हम अपनी शक्ति को,
खुशी को कायम रखें।
छोटे बच्चों की चंचलता को काबू पाने के लिए उनकी रुचि को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जैसा दीदी जी ने हमें बताया है। मैं अगले प्रश्नकर्ता को आमंत्रित करती हूँ, श्री प्रकाश जी।
दीदी मेरा प्रश्न यह है कि अगर मेरी गलती न होने के बावजूद अगर किसी ने मुझे डांटा तो मेरा सर बेचैन हो जाता है, सर दर्द देने लगता है, इसके ऊपर उपाय बताइए।
पहले तो कई बार हमको ये लगता है कि ये मुझे बिना वजह डांट रहा है। हो सकता है अगले के डांटने की कोई वजह हो जो हम उसको नहीं जान पाए। ये भी हो सकता है कि हमारी कुछ पिछली की हुई गलतियों का प्रभाव उनके मन पर हो, उस लिंक से भी वो डर सकते हैं। तो इसलिए पहले तो अपने मन को शांत रखें, हम अपने उस संकल्प को स्टॉप करें। हो सकता है किसी कारणवश कहा हो, मेरे कभी कारण समझ में ना आया, उस समय अगर आप शांति को अपनाएंगे, वातावरण शांत हो जाने के बाद फिर आप प्यार से उनसे पूछिए, आपने ये जो बात कही, मैंने ये गलती की नहीं थी, क्या कारण था, मुझे समझाएं ताकि मैं आगे के लिए सावधान हो जाऊं। हो सकता है उनको ये भी कभी मन में आए कि ऐसा न हो कि ये दूसरा कार्य कर बैठे, कोई डाउट हो, या पिछले कर्म का प्रभाव या डाउट या कुछ और भी उनका कारण हो सकता है। उस समय अगर आप पूछेंगे आप ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हो, तो वो बात बढ़ती जाएगी, वो भी तनाव में आएंगे, आप भी आएंगे और आपका सिर दर्द होता जाएगा, क्योंकि सोच ज्यादा चलने लगेगा। वहां धीरज रखें, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति है, शांति मेरे गले का हार है, पहले उसको मैं न निकालूं, उसके बाद समय आने पर उनसे जरूर पूछिए कि ये किस कारण से आपने ये बात कही, उसको समझने की कोशिश करिए, तो वो भी अपने दिल की बात बताएंगे, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो ये बात को हम बातचीत करने से हल्का कर सकते हैं, पर बातचीत करने का समय योग्य समय होना चाहिए।
तो हम अगले प्रश्नकर्ता को आमंत्रित करते हैं, जिनका नाम है राजा बाहू दुरुककर।
दीदी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं किसी से सहानुभूति रखता हूं या उसके कोई भी काम के अंदर मैं हाथ बटाता हूं, तो जिस टाइम पे मेरी जब बारी आती है, तो जिस व्यक्ति के लिए मैंने सहानुभूति रखा है या तो फिर मैं काम उसके लिए किया है, तो उसने भी मेरे बारे में सहानुभूति और मेरे काम में सहयोग करना, ये मेरे लिए ऐसा समझना ये उचित होता क्या?
वास्तव में हर आत्मा के प्रति हमें सहानुभूति रखनी ही चाहिए, कार्य में सहयोग भी देना चाहिए, और आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये अपेक्षा न करें कि मैंने किया है इसलिए मुझे रिजल्ट इमीडिएट मिलनी चाहिए। आज मैंने किया, कल मुझे जरूरत पड़ी तुरंत वो करें। हो सकता है जब उसने मदद नहीं की, सहयोग नहीं दिया, उसकी उस समय में कोई मजबूरी हो, कोई और कार्य में व्यस्त हो, या अपने कुछ कारणों में लगा हुआ हो, इसलिए न की हो। तो अगर हम हर समय ये अपेक्षा करते रहेंगे तो हमारा मन जरूर दुखी होगा। एक बार एक महात्मा जी स्नान करने के लिए गंगा जी के ऊपर गए, वहां एक बिच्छू तड़प रहा था पानी में, उन्होंने हाथ से निकाला, जैसे ले उसने काट दिया, गिर पड़ा, हाथ कांप गया, फिर से उठाया, फिर से काटा, हाथ कांप गया था। देखने वाले ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि आप ये क्या कर रहे हो, वो आपको काट रहे हैं और आप बार बार उसको बचा रहे हैं। कहते उसका धर्म है काटना, मेरा धर्म है बचाना, जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ा तो मैं क्यों अपना धर्म छोड़ू, वो अपना कर्म नहीं छोड़ता मैं क्यों अपना कर्म छोड़ू। तो इसलिए जो मेरे अंदर सद्गुण है, सहयोग की भावना है, उसको एक तो हम बदले में उसका रिटर्न ना चाहें, और अपने कर्तव्य से हटे भी नहीं, विचार करे भी नहीं, मेरा कर्तव्य करते चल, नेकी कर कुएं में डाल।
जैसा बोओगे वैसा पाओगे, मेरी अच्छाई मेरे साथ, मेरी बुराई मेरे साथ। मैं अपना धर्म क्यों छोड़ू, मैं अपना कर्म क्यों छोड़ू, मैं अपने सद्गुणों से क्यों दूर जाऊं, किसी के दुर्गुणों को मैं अपने ऊपर क्यों हावी होने दूं। बहुत ही सरल और समाधानकारक जवाब आदरणीय पुष्पारानी दीदी जी ने हमें दिया है। मैं अब आगे आमंत्रित करती हूँ प्रवीणा बालपांडे।
हमें राजयोग की शिक्षा लेने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए और हम अपने बच्चों को ये राजयोग कैसे सिखाए, आप मार्गदर्शन कीजिए।
सबसे पहले आप स्वयं सीखे, थोड़ा समय अपने और कार्यों में से भी निकाल करके समय दीजिए, और वो 7 दिन का कोर्स करने के बाद जब सेल्फ रियलाइजेशन होगी, परमात्मा का परिचय मिलेगा, कैसे योग लगाना, कैसे मन को एकाग्र करना, ये गाइडेंस दी जाएगी, तो आपको खुद में परिवर्तन आएगा। जो आप अनुभव करेंगे, आपका अनुभव बच्चों को यहां तक लाने में अपने आप प्रेरित करेगा और वो मार्ग भी निकल आएगा। क्योंकि जब तक खुद हम अनुभव नहीं करते हैं कि राजयोग क्या चीज है, क्या उससे लाभ होता है, क्या जीवन में परिवर्तन होता है, वो अनुभव करने के बाद जरूर दूसरों को देने का, बच्चों को भी देने का ख्याल रहेगा। क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर कोई बीमारी एक डॉक्टर से हम ठीक होते हैं तो दूसरे को भी वो रास्ता अपने आप बताते हैं। ऐसे हम भी राजयोग के द्वारा अगर खुद लाभ ले लेंगे तो हम दूसरों को रास्ता बताए बिना रहेंगे ही नहीं। इसलिए आपको सादर आमंत्रण देते हैं, आप आइए, थोड़ा समय दीजिए, इसको सीखिए और अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा।
आगे मैं प्रश्न करने के लिए आमंत्रित करती हूँ मोहिनी जोशी।
विद्यार्थी और शिक्षक में मधुर संबंध कैसे बनाए?
मधुर संबंध बनाने के लिए पहले तो उनको केवल आप स्टूडेंट नहीं समझे, अपने बच्चा समझे, वो स्नेह रखें, उनके लिए कल्याण की भावना रखें। ये मन में ना हो ये मेरी ड्यूटी है, मुझे पूरी करनी है, वो समय पर रहना है, क्योंकि मुझे इसके वज में पगार लेनी है। समय पास कई बार उस दृष्टिकोण से कर लेते हैं, परंतु हमारे मन में हो कि जो विद्या जो शिक्षा हमने ग्रहण की है, हम ये बच्चों के अंदर उनके संस्कारों में भरे। जब एक बच्चों के अंदर आप प्यार भावनाओं में प्यार भरेंगे तो बच्चे बहुत कोमल दिल होते हैं, सच्चे भी होते हैं। ये थोड़ा झूठ बाद में संग दोष में आके आता है, तो आपके सच्चे प्यार को जरूर स्वीकार करेंगे और बच्चे खिंचे खिंचे आएंगे आपके स्कूल के अंदर। फिर उतने प्यार से उनको आप पढ़ाइए, रुचिकर बनाइए, ताकि बच्चे इसमें बहुत खुश हों। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, खेल कूद का भी पीरियड रहता है, उसमें भी उनमें उतनी रुचि दिलाइए। तो जो आपसी मन की भावनाएं हैं, बच्चे का कल्याण हो, ये बच्चा अच्छी मार्क्स में पास हो, ये बच्चा कोई ऊंचे डिग्री को लेकर के आगे बढ़ सके, वो आपके कल्याण का भाव आपके मधुर संबंधों को बढ़ा देगा। केवल पढ़ाना है वहां तक नहीं, इनके अंदर वो चीज जाए, वो प्रेम का भाव ही उनको समीप आपके ले आएगा।
हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक के सभी प्रश्नों का बहुत ही
बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी स्नेह भरी मृदुभाषिणी आदरणीय पुष्पारानी दीदी जी ने समाधानकारक जवाब दिए हैं। अब मैं अंतिम प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूं कि वे अपना प्रश्न उपस्थित करें। उनका नाम है अनुराधा तुसे।
दीदी, मेरा एक प्रश्न है कि जब भी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ तो इतनी खुश होती हूँ, और जब एकाद ऐसी घटना मेरे साथ हो गई दुखद, तो इतनी दुखी हो जाती हूँ मानो संसार में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा क्यों? इस पर थोड़ा उपाय बताइए।
इसके लिए कहेंगे बैलेंस की कमी। प्रॉपर्टी हो गई, खुश। किसी ने प्यार से बोला, खुश। लाभ हो गया, खुश। और कोई ऐसी बात आपके मन की विपरीत हो गई तो दुखी। यहां आप संसार का एक नियम समझिए। एक तो कहा जाता है दुख और सुख इस संसार में, दूसरा आप समझिए जो भी बात मेरे सामने आती है वो मेरे कर्मों के फल स्वरूप आती है, मेरे संस्कारों के ही फल स्वरूप आती है। इसका यह भी कारण हो सकता है संकल्पों की अधिक उत्पत्ति। खुशी का पीरियड आया उसमें भी संकल्पों की अधिक, और अगर दुख की बात आ गई उसमें भी संकल्पों की उत्पत्ति अधिक। वो अधिक उत्पत्ति होने से, अधिक मात्रा में होने से वो परिणाम हमारे जीवन पे आ जाता। तो ये खुशी गम कभी वो छोटी कोई बड़ी तो हमारा स्थिति भी वैसी बन जाती है। इसलिए समानता को, मन के विचारों को, संकल्पों को बैलेंस में रखिए। ना अति खुशी ना अति गम, ये भगवान पर भरोसा रखेंगे तो अपने आप को स्थिति में नहीं ले जाएंगे, चित्त को शांत रखें, अधिक चिंतन में ना जाएं, क्योंकि दोनों बातों का अधिक चिंतन होता है। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं उतावलापन आ जाता है। पानी जैसे बहता है, हम बह जाते हैं उसके अंदर, बातों के क्रम में भी हम बह जाते हैं। इसके लिए अपने आप को आत्मनिश्चय करो और आत्मस्मृति में रह के अंतर्मुखता को धारण करो। बाहर का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा न पड़े।
जो निशाने पे लग जाए उसे कहते हैं तीर, जो दिल में उतर जाए उसे कहते हैं तस्वीर, जिनकी बातें सुनकर बदल जाती जाए उसे कहते हैं तकदीर। दीदी, सचमुच हमारे किन्हीं प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने स्टूडियो में उपस्थित रहे, आपके सुंदर और समाधानकारक मार्गदर्शन में आज यहाँ पे कई लोगों की तकदीर जरूर बदली है। दीदी हमारे स्टूडियो में आई, बहुत ही सुंदर और समाधानकारक मार्गदर्शन किया, इसीलिए पूरे शिक्षकों की ओर से और अपनी ओर से मैं संयुक्ता थोरात परम आदरणीय पुष्पारानी दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दीजिए प्रणाम।